رکو نمبر 8 59 سے 64، اللہ کی راہ میں خرچ کا بدلہ پورا ملے گا، گھبراتے کیوں ہو؟ ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے، تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی، کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں خوب جان رہا ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق مارا نہ جائے گا۔ ذرا سا سوچیے، اور اس میں صرف مال نہیں ہے، ڈالرز پاؤنڈ کرون نہیں ہے، اس میں آپ کا وقت، آپ کے جذبے، آپ کی ایفرٹ، سب کچھ اس میں آتا ہے۔ اللہ اتنے زیرو لگا کے آپ کو دیتا ہے کہ بندے کو یقین نہیں آتا کہ یہ میرے ہیں۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا، ٹٹ فور ٹیٹ، کچھ ایسا کرے تم ویسا کرو۔ اسلام بندے کو کوئی نائف تو نہیں بناتا یا نا سمجھ تو نہیں بناتا، اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، یقیناً وہ سننے جاننے والا ہے۔ اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں، یعنی ڈیسیو کریں، دھوکہ دیں، تو اللہ تجھے کافی ہے، اس نے اپنی مدد سے مومنوں سے تیری تائید کی ہے، ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈال دی۔ اب اس کو ہائی لائٹ کریں۔ آپ کو کسی کی محبت چاہیے، شوہر آپ کے قدموں میں اور محبوب آپ کے قدموں میں، اور بچے آپ کے تابے دار ہو جائیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، یہ آیت سنیے ذرا۔ محبتوں کا خزانہ الودود کے ہاتھ میں ہے، زمین میں جو کچھ ہے اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا، یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ اے نبی، تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔ ایمان سے متعلق دو آیات، 62 انفال، مومنوں کے خلاف سازشوں میں، اللہ مومنوں کا مددگار ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ 64 انفال، اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کے لیے اللہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اب یہاں کچھ ہتھیاروں کی بات ہوئی ہے، ذرا سا سمجھیے۔ اسلام کا اعتماد استعمال قوت سے زیادہ، بلکہ استعمال ہتھیار کہہ لیں، ویپنس لکھ لیں، جو مرضی لکھیں، مظاہر قوت پر ہے، یعنی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور یہ معروف مثل ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے کہ ہتھیار رکھو، پوری تیاری کر کے بیٹھو، اگر ان کے پاس F-16 ہے تو تم F-17 لے لو، اگر ان کے پاس توپیں ہیں تو تم توپوں کے اوپر لگے ہوئے ریڈار والی لو، ہاں جب وہ نہیں رکھیں تم بھی نہ رکھو، لیکن دکھاؤ، بس روب ڈالو، مروبیت ہو، اس لیے رکھو۔ ایک معروف مثال، اچھی تو نہیں لگتی لیکن میں دینا چاہوں گی، کہ جب آپ اکیلے میں واک کریں اور راستے میں کتے ہوں تو وہ کتے آپ کی طرف دوڑیں گے۔ ایک شخص کہیں جا رہا تھا تو اس کے پیچھے کتے پڑ گئے، گھبرایا، خیر جان بچی، آگے ایک بزرگ ملا، کیا ہوا؟ کہا یہ ہوا، کہا کل آتے ہوئے نا بس ایک یہ درخت سے ایک ذرا سی چھڑی توڑ کے نا وہ ہاتھ میں رکھ لینا، کہنا اس سے کیا ہوگا، کہنا کر کے تو دیکھ۔ اگلے دن جب وہ واک پہ گیا نا تو اس نے ہاتھ میں وہ چھڑی پکڑ لی، کوئی کتا اس کے پاس نہیں آیا، آگے بزرگ کھڑا تھا، اس نے کہا دیکھا کتا ہاتھ میں چھڑی دے کے قریب نہیں آتا، اتنا بزدل ہے، ڈرپوک ہے۔ تو یاد رکھیے، ہتھیاروں کا بھی بس یہی کام ہے۔ مختلف اسپیشل ڈیز کے اوپر جو پریڈ دیکھتے ہیں، دل تو بیٹھتے ہیں نا، اٹامک انرجی ہونا چاہیے، نیوکلیئر بوم ہے تو ہونا چاہیے، اور شاید یہی ہے تو جس کی وجہ سے ابھی تک ہم اپنی کمزوریوں کے باوجود اللہ کی رحمتوں سے بچے ہوئے ہیں۔ لیکن مومن کا اعتماد کیا ہے؟ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، یہ صحابہ کرام کے لیے تھا۔ کیوں ہتھیاروں پہ اتنا اعتماد کیوں نہیں کرنا؟ اس لیے کہ اسلام خود اپنی ذات میں سب سے بڑی طاقت ہے۔ جس کا اسلام جتنا پکا، جتنا پیارا ہوتا ہے نا، وہ اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے۔ ہاں ایک اور طاقت ہے جس کو آج امت مسلمہ بھولی بھی ہے، اور وہ ہے آپس میں اتفاق سے رہنا، اتحاد، یونٹی۔ آپس میں اتفاق رکھنا اتنا ضروری، مگر اتنا کم کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپس میں اتفاق رکھنا دشمن پر غلبہ پانے سے زیادہ مشکل کام ہے۔ ایم آئی رائٹ اور رونگ؟ ایک جگہ کام کرتے ہوئے اتنے کمپیوٹر خراب نہیں ہوتے جتنے دل خراب ہوتے ہیں، اتنی لسی کھٹی نہیں ہوتی جتنے دل کھٹے ہو جاتے ہیں، اتنی جوتیاں نہیں چبھتی جتنی باتیں چبھتی ہیں، لیکن پھر بھی اتفاق، پھر بھی اتحاد۔ آپ کے جسم کے نرم گوشت نے ہڈیوں کو برداشت کیا ہوا ہے، آپ کی نرم زبان چاروں طرف کے سخت دشمنوں میں بیٹھی ہوئی، تبھی تو کام ہو رہا ہے، دانت نکال دو کیونکہ آپ کی زبان کو نہ کھا جائیں تو پھر آپ کیسے کھائیں گے مزے مزے کی چیزیں؟ اچھا زبان نکال دیتے ہیں تو پھر ٹیسٹ کہاں سے آئے گا؟ ایسے ہی ہوگا، آپ کو ایسے ہی رہنا ہے، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے. اور اچھا ہے آپ کو بھی تو کوئی ذرا سا کوئی جلانے والا ہو، آپ پتہ نہیں کس چیز میں دوسروں کو رکھتے ہیں. اور پھر اگلا اصول یاد رکھیے، اسلام کی فتح کا راز جنگی مقابلوں میں نہیں، اس کے اصولوں کی تبلیغ میں. اسلام ایک ڈسپلن ریلیجن ہے، با اصول دین ہے. آپ جنگی مقابلے کرا لیں، ادھر سے توپیں، ادھر سے تیر، ادھر سے وہ، بدر سے لے کے تبوک تک ملاحمات کہتے ہیں ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں پڑھ کر دیکھیے. ہر دور میں مسلمانوں کے اسباب تھوڑے تھے، افراد تھوڑے تھے، ٹوٹی ہوئی تلواریں لے کے جاتے تھے، جیت کے آتے تھے کیونکہ اصولوں کے پکے تھے. آج ہم بے اصول ہو گئے. فیتھ ان ایکشن، پرامن فضا میں پرامن طریقوں سے دعوت اسلام کا کام کرنا. ہاں جب کوئی جنگ اور جب کوئی آپ کو للکارے تو پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کر بات کرنی ہے، اور آپس میں اتفاق اور محبت سے رہنا ہے. رکوع نمبر 9 65 to 69، جہاد کے لیے ذہنی اور ایمانی تیاری کی اہمیت. یعنی مومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان تیاری کے بغیر کوئی کام کرنا شروع کر دے، اوور کانفیڈنٹ بھی نہیں ہونا. یا ایھا النبی یحرض المومنین علی القتال، اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائیے، اگر آپ میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر آپ میں 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں. اچھا اب تو اللہ آپ کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے. یہ کون سی ناتوانی تھی؟ ایمان کی کمزوری آتی جا رہی تھی وقت کے ساتھ، اس کے لیے اللہ نے تھوڑی سی سہولت دے دی. بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی جتنا ایمان پختہ تھا اتنا مسلمان کے لیے چیلنج بڑا تھا. نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی طرح خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے. تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے، اور اللہ زور آور با حکمت ہے. اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی. بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی خوب کھاؤ پیو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ایک آیت ایمان سے متعلق، 65 انفال. ایمان کی مضبوطی مومن کو کئی گنا دشمنوں پر بھاری کر دیتی ہے. اب ان آیات میں جو بات ہے تھوڑا سا اس کو سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ نے ان ساری آیات میں مسلمانوں کو وہ اندر کے راز بتا دیے کہ اگر مسلمانوں کو وہ معلوم ہو جائیں تو وہ بہت جلدی دشمنوں پہ غالب بھی آئیں گے اور اپنے نفس کے اوپر بھی غالب آئیں گے. پہلی بات آپ نے دیکھی کہ یہاں ہزاروں کی بات ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگ کرنا افراد کا کام نہیں ہے، یہ اجتماعی کام ہے. امت مسلمہ کا وہ حکمران جو اللہ کے نام پہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے نامینیٹ کیا گیا ہو وہ جنگ ڈکلیئر کرے گا تو جنگ ہوگی. 13 سال تک آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ ابو بکر گئے اور جا کر کسی کا سر پھوڑا ہے، اور پھر عمر تو رکے ہی نہ، وہ جا کر 5-6 کافروں کو مارا ہے. کفو ایدیکم، اجتماعی کام ہے، یہ آپ کا میرا نہیں ہے، یہ افراد نہیں اٹھ کر چل پڑتے اس کے لیے. آج چونکہ ہم آئیڈیل حالات میں نہیں ہیں نا، اس لیے مسائل ہے. جو درد رکھتے ہیں وہ بھی ٹھیک رکھتے ہیں، جو جا کے لڑ رہے ہیں ان کے اندر بھی جذبے بہت ہیں، کیونکہ دوسرا نہیں کر رہا تو وہ بیٹھ کے دیکھتے رہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتاب میں جو بات بتائی وہ اجتماعیت کی ہے. پھر اس میں فقہ کی بات ہوئی، تفقہون یفقہون، ان کو سمجھ نہیں ان کو سمجھ ہے، آگے بھی بات آئے گی اس پہ تو نوٹ کیجئے گا. ہمارے ہاں فقہ کس کو کہتے ہیں؟ جھگڑے کی بنیاد، ان کی فقہ ان کی فقہ، اس کا اندر کسی ایک کی ٹھیک ہے. حالانکہ فقہ کہتے ہیں وہ بصیرت اور شعور جو ایمان کے نتیجے میں حاصل ہو. قرآن کو سمجھا ہوا شخص صاحب فقہ ہوتا ہے، فقاہت اللہ دے دے. آپ دیکھیے جو ایمان اس سال ہم نے چوز کیا ہے نا، مجھے اس کو 2 مہینے میں دورہ قرآن کروانے پہ چوز کرنا چاہیے تھا، یا پھر مجھے اگلا پورا سال ایمان پہ بات کرنے کی اجازت دیجیے. کیونکہ ایمان دل کے اندر ایک روشنی لاتا ہے. جیسے ایک اندھیرے کمرے میں ایک بلب جلتا ہے نا तो आप कमरे में पड़ी हुई हर चीज़ को देख लेते हैं, और जितना तेज़ बल्ब होगा आपको उतनी ही चीज़ें, क्या मिट्टी दिखेगी, कचरा दिखेगा, धूल दिखेगी। जितना आपके अंदर ईमान आता जाता है, आप अल्लाह की हकीकतों को, अल्लाह की इस दुनिया की हकीकतों को देखते हैं, आप कह सकते हैं कि ईमान एक रब्बानी शऊर है जिससे इंसान हकीकतों को असल सूरत में देखने लगता है, और इंसान ज़िंदगी और मौत की हकीकत को पा लेता है कि असल ज़िंदगी हयात आखिरा है। यही चीज़ मोमिन को निडर बना देती है, और फिर ईमान वाले के लिए तो मौत जन्नत का दरवाज़ा बन जाती है, और फिर वो भी मौत कौन सी जो कि अल्लाह के रास्ते में आए। वला तकूलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाह अमवाता, जिसको हम शहादत कहते हैं। शहादत तो मोमिन के लिए जन्नत का शॉर्टेस्ट रूट बन जाती है, मुख्तसर तरीन रास्ता। आप नेविगेटर चूज़ करते हैं तो वो आपसे पूछता है ना, कौन सा रास्ता चाहिए, टोल फ्री, टोल फलां, लंबा छोटा। जब अंदर ईमान का बल्ब जलता है ना, तो फिर पता चलता है कि शहीद पे अजाब कब्र कोई नहीं, शहीद का हिसाब कोई नहीं, शहीद सीधा जन्नत में, शहीद की रूह जन्नत में, सब्ज़ परिंदे की सूरत में, सारा दिन चरते चुगते रात को अल्लाह ताला के अर्श के नीचे आकर सो जाते। तो फिर दिल कैसे लगे, साहबा का दिल क्यों नहीं लगता था दुनिया में। और याद रखिए कि यहाँ एक और बात जो हमने देखी, मोमिन और गैर मोमिन का फ़र्क। ये जो ईमान ना होना है ना, ये गैर मोमिन होना है। मोमिन अल्लाह से डरता है, गैर मोमिन लोगों से डरता है। मोमिन आखरत की फ़िक्र करने वाला है, और गैर मोमिन दुनिया की फ़िक्रों में घुलने वाला है। अपने आप को हम खुद परखें, कोई हमें नहीं जानता, हम खुद को जानते हैं। मोमिन हकीकत पसंद होता है, गैर मोमिन जज्बाती अमल करने वाला होता है। मोमिन वसत वाला, ज़र्फ़ वाला होता है, और गैर मोमिन तंग ज़र्फ़ होता है। अल्लाह ने यहाँ 1,000 के मुकाबले में 100, और फिर बाद में 200 के मुकाबले में 20 की बात करके क़िताल का हुक्म जमात और फ़ौज के लिए यह असूल दे दिया। जंगी कैदियों के लिए जो बात थी, जो वह किस्सा चल रहा है, अल्लाह के नबी सल्लम का दिल नरम था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी रकीकुल कल्ब थे, अल्लाह के नबी इनको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है ना, इनसे हम कुछ काम ले लेते हैं, इस्लाम को माल की ज़रूरत है। जबकि हज़रत उमर और हज़रत साद बिन माज की राय मुख्तलिफ थी, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, अल्लाह ने सारे सरदार कुफर के, जो जिसको आप कहते हैं कि उनके दिमाग आपको दे दिए, इनको कुचल दीजिए, वरना ये दोबारा साजिशें करेंगे और अगले साल आ जाएंगे। उनकी राय ठीक थी, क्योंकि अल्लाह का असल मंसूबा क्या था, प्लान क्या था, कि कुफर और शिर्क की जड़ उखड़ जाए। इसीलिए अल्लाह ने सारे सरदाराने कुरैश को मैदान बदर में जमा कर दिया। बदर के कैदियों की मोहलत मुद्दत एक इज्तिहादी गलती के नतीजे से हुई थी, लेकिन इससे उनके लिए इस्लाह का दरवाज़ा खुल गया, और तारीख़ गवाया कि बदर के जो कैदी छोड़ दिए गए थे, बाद में उनमें से अक्सर मुसलमान हो गए, बल्कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हो तो उसी कैद के दौरान ही मुसलमान हो गए थे। तो क्या पता चला, हक़ के लिए उठने वाली कोई भी इंसानी तहरीक हो, वो इंसानी नहीं रब्बानी होती है, वो खुदाई मामला होता है, और जिसकी पुश्त पनाही खुद अल्लाह करे, उसको कौन जिताएगा, उसको कौन हराएगा। अल्लाह से लड़ना किसी के बस की बात नहीं है। तो हम सब ने इन सारी बातों को सुनकर क्या अमल करना है, जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए खुद को तैयार करना है। इस नस्ल को खपा दें, कुरान के पानी में डुबो दें, उनको सुनाएं किस्से सहाबा के, और उनके अंदर ईमान लाएं, उनको तहज्जुदों और फजरों पर उठाइए। अगली नस्ल इंशाल्लाह हाथों में तलवार पकड़ कर नहीं, तीर पकड़ कर, और जो वक्त का हथियार होगा उस पर होगी, और ये होगा, ये होने वाला है। हमने अपने बच्चों को कुरान नहीं दिया, वो फजर पे नहीं उठते तो वो दुश्मन के लिए उठेंगे। आप आज के किसी जवान 20 से 25 साल के लड़के को जेहन में लाइए, दुश्मन आ जाए तो ये क्या करेगा, 911 कॉल करेगा, और क्या करेगा, जान छुड़ाएगा, बिस्तर के नीचे छुप जाएगा। आपने अपने बच्चों को क्या ईमान दिया, आप करें करें क्या, हम तो खुद भी ऐसे ही थे, हमें नहीं पता, देखिए मेरी स्टोन से मुझे माफ़ कीजिए। किसी का दिल तोड़ना मेरा मकसूद नहीं है, लेकिन मैं अमूमी तौर पे उम्मत मुस्लिमा की बेहिसी को फील करके कहती हूँ। हमारे बच्चे का एक असाइनमेंट ना हो सारी रात जागेगा, और उसकी एक फजर ना हो में कोई गम नहीं। तो नस्लों को तैयार करना है। रुकू नंबर 10 है, 70 से 75। अब सूरत पूरी हो रही है, इतनी जज्बाती सूरत, इतनी इमोशनल सूरत, लोग कहते हैं बोझल है, मैं कहती हूँ ये लव स्टोरीज हैं, अल्लाह से मोहब्बत की कहानी है सूरत अनफाल में, और फिर आगे तौबा में भी। तो क्या टॉपिक है आज के दौर के अंसार और मुहाजिर। या यूहन्नबी यकुल लिमनफी ऐदी को मिन अलअसरा, ए नबी अपने हाथ तले के कैदियों से कह दो कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में नेक नियति देखेगा तो जो कुछ तुमसे लिया गया है इससे बेहतर तुम्हें दे देगा, और फिर गुनाह भी माफ़ फरमाएगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और अगर वो तुझसे खयानत का ख्याल करेंगे तो ये तो इससे पहले खुद अल्लाह की खयानत कर चुके हैं, आखिर इसने इन्हें गिरफ्तार करा दिया, और अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला है। जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, गिन रहे कितनी किस्म के लोग हैं। और जिन लोगों ने इनको पनाह दी और मदद की, ये सब आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। और जो ईमान तो लाए हैं लेकिन हिजरत नहीं की, तुम्हारे लिए इनकी कुछ भी रिफाकत नहीं जब तक कि वो हिजरत ना करें। हाँ, अगर वो तुमसे दीन के बारे में मदद तलब करें तो तुम पर मदद करना ज़रूरी है, सिवा इन लोगों के कि तुम में और इन में अहदो पैमा है। तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह खूब जानता है। तीन किस्म के लोगों का तस्करा इस आयत में। काफिर आपस में एक दूसरे के रफीक हैं। चौथी किस्म, अगर तुमने ऐसा न किया तो मुल्क में फितना होगा और ज़बरदस्त फसाद होगा। जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया और जिन्होंने पनाह दी और मदद पहुंचाई, यही लोग सच्चे मोमिन हैं। इनके लिए बख्शिश है और इज्जत की रोज़ी है। और जो लोग इसके बाद ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ होकर जिहाद किया, बस ये लोग भी तुम में से ही हैं और रिश्ते नाते वाले, इनमें से बास बास के ज़्यादा नज़दीक हैं अल्लाह के हुक्म में। बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। तीन आयात ईमान से मुतल्लिक। 72 मुहाजरीन और अंसार की फजीलत। आयत 74 अनफाल, अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों के आपस के ताल्लुक की तारीफ। यानी ये नहीं कि अल्लाह के रास्ते में दूसरों को अल्लाह से जोड़ रहे हैं और ख़ुद आपस में कट रहे हैं। और अनफाल 75, खूनी रिश्ते एक दूसरे के ज़्यादा हकदार होते हैं लेकिन ईमानी रिश्ता इससे भी ऊपर है। क्या पता चला कि ये है वो आयत जिसमें मुहाजरीन और अंसार का तस्करा है। हम बचपन से इनके किस्से सुनते आ रहे हैं, वो ऐसे थे वो ऐसे थे, उनको ये मिला उनको वो मिला, लेकिन कभी आपने सोचा कि अल्लाह ने उनको क्या खूबियाँ दी? और देखिए जन्नत अदन की बात आई है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत अदन में दो बाग सोने के हैं और दो चांदी के हैं। यानी खूबसूरती की इंतहा देखिए, और ये सारा इनको मिलना है जिनके तस्करे इधर हैं। आप और मैं अपनी ज़िंदगी पे इसको लेकर देख लें, यानी जन्नत में जिन घरों को और जिन बागों को अल्लाह सोने और चांदी का कह रहा है, तो सोचिए फिर वहाँ जो जेवर पहनाया जाएगा वो किस सोने का होगा। हम दुनिया में सीमेंट और मिट्टी और पत्थर गारे का जेवर तो नहीं पहनते ना, तो जब घर सोना चांदी के हैं तो बाकी क्या होगा। और ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, और ज़ालिका इज़्ज़त और तशरीफ़ का आयत 72 के अंदर कहते हैं गंगा जमनी चूड़ियाँ, टू टोन चूड़ियाँ, सिल्वर गोल्डन। अल्लाह ने एक को सिल्वर और एक को गोल्डन कहा, और असल जो आज आप ख्वाहिश करके यहाँ से उठेंगे वो यही करेंगे कि अल्लाह या मुझे मुहाजिर बना ले या मुझे अंसार बना ले। आप देख रहे हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने इधर इन चीज़ों को लाकर आपको मुझे ये बता दिया कि हम अल्लाह के काम के बन जाएं, फ़ायदा होगा। हम भी मदद करते हैं, हर इंसान करता है, मुसलमान भी करता है, गैर मुस्लिम भी करता है, लेकिन हम एक दूसरे की मदद अपनी निस्बतों की वजह से करते हैं। भाई की कर दी, बहन की कर दी, कोई प्यारा है तो कर दी, किसी को जानते हैं तो उसकी कर दो। लेकिन अंसार ने मुहाजरीन की मदद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की निस्बत से की, अल्लाह की मोहब्बत में की, ईमान की निस्बत से की। ये आसान नहीं है। 3 दिन से ज़ायद कोई मेहमान आपके घर आके ठहर जाए, फिक्र लग जाती। करते तो सब कुछ है लेकिन मुरव्वत में, मजबूरी में नहीं। इन्होंने भी किया था, हम पाकिस्तान जाएंगे तो हम भी करेंगे, वो भी हमारी करेंगे, और ये और वो, और कहीं को डर भी होता है, किसी रिश्ते का कोई गुमान भी होता है, लेकिन वो अल्लाह के तरफ से आने वालों को दे रहे। और जिन्होंने हिजरतें की, आप और मैं कर सकते हैं? माफ़ कीजिए, आप चूँकि मेरे सामने तो पूरी दुनिया के डिफरेंट लोग हैं ना, क्या आप अपना ये मुल्क छोड़ के जा सकते हैं किसी वजह से? क्या आप अपना पाकिस्तान या अपना इंडिया या अपना बांग्लादेश छोड़कर किसी सोमाली मुल्क में या अफ्रीकी मुल्क में जा सकते हैं जो इन मुल्कों से भी गरीब हो? ये तो मुझे पता है कि दूसरी तरफ तुम जा सकते हैं, और हम अमेरिका में इतने साल से रहने वाले छोड़ सकते हैं इसको? कनाडा वाले, नॉर्वे वाले, पेरिस वाले रोते हैं, धोते हैं, कुल बुलाते हैं। वो कहते हैं ना कि सांप के बिल में हाथ रखा हुआ फिर भी जा नहीं सकते, तो साहबा के दिल कैसे थे? वो च्विंगम लग जाती है ना कपड़े में, तो कपड़ा फट जाता है, च्विंगम नहीं उतरती। इस तरह ये दुनिया की मोहब्बत हमारे साथ चिपकी होती है। तो ऐसे वक्त में अपना घर बार छोड़ना क्यों? क्योंकि हिजरत जन्नत में दाखिले का दरवाज़ा है। जिससे प्यार होता है ना उसके लिए छोड़ते हैं, माल से प्यार है माल के लिए आते हैं, शादी हुई शादी के बाद इधर शिफ्ट हो गए, तालीम से प्यार है तालीम के लिए हमारे बच्चे, क्या बच्चियाँ भी जाती हैं दूसरे मुल्कों में, अकेली रहती हैं, अकेली आती जाती हैं, हमें कोई फिक्र नहीं। हम किस दीन की दूसरों को दावत दें? सोचने की बात है। तो याद रखिए कि अल्लाह के नापसंदीदा मुकाम से निकलकर अल्लाह के पसंदीदा मुकाम की तरफ जाना असल में जन्नत में जाना है। सहाबा ने ये करके दिखाया। और ये जो आप और मैं बार बार ईमान की बातें करते जा रहे हैं ना, तो ईमान क्या है? आप कहते हैं आमन तो बिल्लाही व कुतुबिही व रुसुली, बचपन से पहाड़ों की तरह पढ़ा हुआ है। हालांकि आपको पता है कि ईमान लाने का मतलब क्या है? अल्लाह पर ईमान लाना अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारने का फैसला है। और ऐसे लोग अक्सर फिर अपनों के बीच में अजनबी बन जाते हैं। कभी अजनबियत इतनी बढ़ती है कि फिर हिजरत की नौबत आ जाती है। फतूबा लिलगुरबा, अल्लाह ताला आपको मुझे इसमें कबूल करे। फेथ इन एक्शन, गैरों में रहकर इनके अंदाज इख्तियार नहीं करने। दियारे गैर की मुश्किलों में दीन पर जमकर आने वाली नस्लों के ईमान की हिफाजत करनी है। अपनी और अपने बच्चों की तरबियत में सहाबाए कराम को मेयार बनाना है। इस्लाम के दिफा में कामयाबी के लिए हर रंग और नस्ल के लोगों से मिलकर काम करना है। और ख़ुद को तालिब इल्म से उठाकर तालिब रज़ाए इलाही बनाना है, यानी ये इल्म आपको अल्लाह की रज़ा दे दे। तो ये थे चंद खूबसूरत जुमले सूरत अनफाल के नाम। अब अगली सूरत है सूरत तौबा। दोनों के बीच में बिस्मिल्लाह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अल्लाह के नबी ने नहीं दी। इससे ये लिख लीजिए कि कुरान के और हदीस के किसी ज़ेर और ज़बर को भी आप और मैं बदल नहीं सकते। कई दफ़ा दुआओं के अंदर हम सब के लाख के लगा देते हैं। सूरत तौबा का मेन थीम क्या है? मोहब्बतों की आजमाइश। दोनों सूरतों में अगर तकाबुल करके दिखाऊँ ना, तो सूरत अनफाल का आखिर अभी हमने क्या पढ़ा है? मुहाजिर और अंसार, ईमान की निस्बत दूसरों से जुड़ना, मुहाजिर बन जाओ या अंसार बन जाओ। सूरत तौबा में कुफार से कटना है, बरा तुमसे शुरू हो रही है बात, अजनबियत बेजारगी से। उसमें गज़वे बदर का जिक्र था, इसमें गज़वे तबूक का जिक्र है। वो पहली जंग थी अल्लाह के नबी की बाज़ाब्ता तौर पे, छोटे मोटे और थे मार के उससे पहले भी, ये आखिरी जंग थी। गज़वे बदर गलबा इस्लाम का आगाज़ था और गज़वे तबूक गलबा इस्लाम का कमाल था। और पिछली सूरत के साथ इसको जोड़ लीजिए तो अल्लाह ताला ने ये बता दिया, जितना ज़्यादा तुम अल्लाह से जुड़ते जाओगे अल्लाह तुम्हें पुरानी गलत चीज़ों से काटता जाएगा। हमारा मसला पता क्या है? हम अल्लाह से जुड़ना चाहते हैं, शैतानी चीज़ों से कटना नहीं चाहते। हमें अल्लाह के रास्ते अच्छे लगते हैं लेकिन शैतानी रास्ते भी नहीं छूटते। वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर दो रुखापन होता है, पुकारे मुझे घनेरी छाँव। कहीं हमें धूप अच्छी लगती है तो कहीं छाँव भी अच्छी लग रही होती है। तो कहीं जुड़ने के लिए कहीं से कटना ज़रूरी होता है। बेटी माँ बाप का घर छोड़ती है ना, फिर ही शौहर के घर में आती है। तो पिछली निस्बतें, पिछले गुनाह, पिछले तरीके थोड़े थोड़े करके छुटते जाएंगे, अल्लाह आपको नेकियों में बढ़ाता जाएगा। आइए शुरू करते हैं सूरह तौबा। 9 नंबर की यानी 9th सूरह है, 129 आयतें हैं इस बारे में इसकी। सूरत का नाम तौबा है ना, तो सूरत तौबा में तकरीबन 16 टाइम तौबा का जिक्र है। तौबा किस तरीके से इसमें अल्लाह ताला ने वाकई हम सबको तौबा करने की दावत दी है, और इसी तरह से आप ये कह सकते हैं कि इस सूरत के तकरीबन 15-16 नाम हैं, और ये 9 हिजरी, और इसका नज़ूल का टाइम छोड़ दीजिए, बस इतना समझ लें कि फ़तेह मक्का के बाद नाजिल हुई, इसीलिए इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं। चलिए देखते हैं। 1 से 6। बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन। टॉपिक है एलाने बरात। अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से बेजारी का ऐलान है इन मुशरिकों के बारे में जिनसे तुमने अहदो पैमान किया था। पस से मुशरिको, तुम मुल्क में 4 महीने तक तो चल फिर लो, जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो, और ये भी याद रहे कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करने वाला है। अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को बड़े हज के दिन साफ इत्तला है कि अल्लाह मुशरिकों से बेजार है और इसका रसूल भी। अगर अब भी तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर है, और अगर तुम रूगरदानी करो तो जान लो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते, और काफिरों को दुख की मार की खबर पहुंचा दीजिए। यहाँ हज अकबर का जिक्र है। हमारे कल्चर में अमूमन जुम्मे के दिन के हज को हज अकबर कहते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। उम्रे को हज असगर, और हर हज को अरब लोग हज अकबर कहते थे। सिवाय इन मुशरिकों के जिनसे तुम्हारा माहदा हो चुका है और उन्होंने तुम्हें ज़रा सा भी नुकसान नहीं पहुँचाया, न किसी की तुम्हारे खिलाफ़ मदद की है, तो तुम भी इसके माहदे की मुद्दत इनके साथ पूरी करो। अल्लाह ताला परहेजगारों को दोस्त रखता है। फिर हुरमत वाले महीनों के गुजरते ही मुशरिकों को जहाँ पाओ कत्ल करो, इन्हें गिरफ्तार करो, इनका मुहासिरा करो, और इनकी ताक में हर घाटी में जा बैठो। हाँ, अगर वो तौबा कर लें और नमाज के पाबंद हो जाएं और ज़कात अदा करने लगे तो तुम इनकी राहें छोड़ दो। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अगर मुशरिकों में से कोई तुझसे पनाह तलब करे तो इसे पनाह दे दो, यहाँ तक कि वो कलामुल्लाह सुन ले। हाईलाइट करिएगा। फिर इसे वो अपनी जाए अमन तक पहुँचा दे, ये इसलिए कि ये लोग बेइल्म हैं। नोट किया आपने? अल्लाह इनकी भी हिदायत की उम्मीद रखता है जिन्होंने अपने नबी को हिजरत तक पे मजबूर किया। तो क्या पता चला कि मुफसिद और मुशरिक के लिए भी तौबा और हिदायत का दरवाज़ा खुला है? हमें भी अपने हर छोटे बड़े गुनाह की मुआफ़ी मांगनी है। दीन पर नए आने वालों को संभलने का वक्त देना चाहिए। गैर मुस्लिमों को कुरान के ज़रिए दीन हक की दावत देनी है, और आज के दौर के अनसार या मुहाजिर बनना। आज आप और मैं कैसे ये काम कर सकते हैं कि हम अल्लाह के दीन की तरफ आने वालों को थामें? आप देखिए कि कुछ लोग हैं वो नए नए आ रहे हैं, जैसे आप में से बहुत सारे लोग जो पहली दफ़ा कुरान सुन रहे हैं। कुरान घरों में आएगा, अंदर आएगा, चेंज आएगी, तब्दीली आएगी, किबले बदलेंगे तो मसले शुरू होंगे। तो आप हैं इस वक्त मुहाजिरात। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। ये आवाज़ जिस जिस कान तक पहुँच रही है और वो पहली दफ़ा कुरान सुन रहा है तो आप मुहाजिरा हैं, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपको पूरी हिजरत का अजर देते अभी से। अंसार कौन है जिनका ये 22वां दौरे कुरान है और जो कई जगह कई लोगों से पढ़ चुके हैं? आप इन आने वालों को थामिए। इन आयतों में अल्लाह ने कहा कि मुशरिकों को भी सुनने का मौका दो तो हम सब तो मुसलमान हैं। अल्लाह हमें आज के मुहाजिर और अंसार बना दे। रुकू नंबर 2, 7 से 16। 7 to 16। अहदों और कस्मों की पासदारी करो। कैफ़ यकून लिल मुशरिकीन अहदुन इंद अल्लाह व इंद रसूलिही। मुशरिकों का अहद अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक कैसे रह सकता है सिवाय इनके जिनसे तुमने अहदो पैमान मस्जिद हराम के पास किया। जब तक वो लोग तुमसे माहदा निभाएं तुम भी इनसे वफादारी करो। अल्लाह मुत्तकियों से मोहब्बत रखता है, इनके वादों का क्या एतबार। इनका अगर तुम पर गलबा हो जाए तो ना ये क़राबतदारी यानी रिश्तेदारी का ख्याल करें ना अहदो पैमान का। अपनी ज़ुबानों से तो तुम्हें खुश कर रहे हैं यानी परचा रहे हैं, लेकिन इनके दिल नहीं मानते। इनमें से अक्सर फासिक हैं। उन्होंने अल्लाह ताला की आयतों को बहुत कम कीमत पर बेच दिया और इसकी राह से रोका। बहुत बुरा है जो ये कर रहे हैं। ये तो किसी मुसलमान के हक़ में किसी रिश्तेदारी का या अहद का बिल्कुल भी लिहाज नहीं करते। ये हैं ही हद से गुजरने वाले। लेकिन अब भी अगर ये तौबा कर लें और नमाज के पाबंद हो जाएं और ज़कात देते रहें तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। इसको नोट करिए आप सर। हम तो जानने वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान करते हैं। अगर ये लोग अहदो पैमान के बाद भी अपनी कस्में तोड़ दें اور تمہارے دین میں تانہ زنی کریں تو تم بھی ان سردارانے کفر سے بھڑ جاؤ۔ ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں، ممکن ہے کہ اس طرح وہ بھی باز آ جائیں۔ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہے، اور خود ہی پہلی بار انہوں نے تم سے چھیڑ کی ہے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو، بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے گا، انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غصہ اور غم دور کرے گا، اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا بوجھتا حکمت والا ہے۔ کیا تم سمجھے بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ تین آیات ایمان سے متعلق۔ پہلی آیت نمبر 10 ہے، مفاد پرست اعتماد پرست نہیں ہوتے، یعنی جو اپنے ہی فائدوں کے لیے آپ کی طرف بڑھے آپ اس میں اعتماد نہ کیجئے۔ آگے ہے آیت نمبر 14، اللہ کو مومن کی خوشی عزیز ہے۔ یہاں ایک بدگمانی ہمارے دلوں میں کہ شاید اللہ تعالیٰ تو ہمیں خوش نہیں دیکھنا چاہتا، تو اس کو چینج کر لیجئے۔ آیت 16، جنت کسے عطا کی جائے گی؟ کیا پتہ چلا کہ جب تک مسلمان خود کھڑے نہ ہوں گے تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ ان آیات میں جو آپ کو چیز سمجھ آنی چاہیے جو آپ کے میرے متعلق ہے، کہ ایک تو کفر اور دوسرا اس کے اوپر وعدے توڑنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد کچھ معاہدے کیے تھے، انہی کے توڑنے کی طرف اشارہ ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو آپ نے صلح بھی کی اور جنگ بھی کی۔ مقصد نہ صلح ہے نہ جنگ ہے، مقصد غلبہ اسلام ہے۔ جو سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ کو جو بات پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز بھی نہیں ہوئی، یہ ابن مسعود کا قول ہے، اس لیے ذرا سی فکر کی ضرورت ہے۔ پھر اتنی بڑی معافی کہ بھائی بنا دیا۔ آپ ذرا سوچئے کہ لوگوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا ظلم اور تکلیف کے ساتھ، حضرت بلال کو کوڑے کس طرح مارے جاتے تھے، کس طرح ان کو جانوروں کی طرح دھکیلا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کو معاف کر رہے ہیں۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ ایسی معافی اللہ کا رسول ہی دے سکتا ہے، اتنا بڑا دل کسی ڈکٹیٹر کا نہیں ہو سکتا۔ کسی نے کہا کہ جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین کو بچاؤ۔ اللہ کرے ہمیں یہ سبق یاد ہو جائے۔ پھر اس میں سینوں کی ٹھنڈک کی بات ہوئی، کیا کافروں کو مار کے مرتا دیکھ کر ان کا خون بہتا دیکھ کر ٹھنڈا ہو سینہ؟ نہیں، مومن کو ٹھنڈک کافر کو قتل ہوتے دیکھ کر نہیں، اسے مسلمان ہوتے دیکھ کر ملتی ہے، اور صحابہ اس کی عملی تصویر تھے۔ فیتھ ان ایکشن، ان لوگوں کے عہد و پیمان کی پاسداری نہیں جو خود عہد توڑے، یعنی اسلام میں جو چیز بالکل قابل برداشت نہیں ہے نا، وہ کمٹمنٹ کر کے پوری نہ کرنا۔ آپ نے لوگوں کو امید دلا دی اور بعد میں آپ اس امید پہ پورے نہیں اترے۔ اسی طرح کسی کو پچھلے گناہوں کا تانا یا یاد دہانی نہیں کروانی چاہیے۔ خود کو اخلاقی کمزوریوں سے پاک کر کے دوسروں کے لیے مفید بننا، اپنی ذات کی نفی کر کے اسلام کی طاقت بننا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔